कल रात आर्यांश ने दीवा को प्रपोज किया था। दीवा और आर्यांश के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे खत्म होने में बस दो ही दिन बचे थे। दीवा उसे छोड़कर ना चली जाए ये सोचकर आर्यांश ने अपने दिल की बात दीवा के सामने रख दी थी। दीवा को भी आर्यांश की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। वो भी आर्यांश को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने उसे हाँ कह दिया था। अब आर्यांश और दीवा का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। साथ तो वो पहले भी रहते थे, पर उनके रिश्ते में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दरार थी। उनके बीच इमोशंस होने के बावजूद एक अलग से दूरी बनी रहती थी। आज आर्यांश और दीवा एक दूसरे को खुलकर बिना किसी शर्तों के प्यार कर सकते थे। उनकी कल की रात काफी अच्छी बीती थी। अगली सुबह आर्यांश ने दीवा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर गया। पूरा नाश्ता दीवा की पसंद का बना हुआ था। तो तुम जानते हो कि मुझे क्या पसंद है? दीवा ने आर्यांश की तरफ देखकर हल्का हैरानी जताते हुए पूछा। आज तक आर्यांश ने कभी जाहिर नहीं किया था कि उसे दीवा की किसी चीज में इंटरेस्ट है। आर्यांश ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और फिर दीवा के लिए चेयर पुल की। वहां नाश्ते की टेबल पर अलग अलग पब्लिकेशन हाउस के न्यूज़पेपर रखे हुए थे। सबके फ्रंट पेज पर एक ही न्यूज थी, आर्यांश कपूर का प्रपोजल। उसे देखकर दीवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे खुद की किस्मत पर नाज हो रहा था। नाश्ता हो जाने के बाद दीवा आर्यांश के साथ गाड़ी में थी। वो उसे हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था। शाम को मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रोककर आर्यांश ने दीवा के हाथ को हल्का सा किस करके कहा। मैं इंतजार करूंगी, दीवा ने जवाब दिया और वो गाड़ी से निकलने को हुई तभी आर्यांश ने उसे पकड़ लिया था। दीवा उसके रोकने का कारण समझ पाती। उससे पहले आर्यांश ने अपने होठों की तरफ इशारा किया और भौहें उठा दी थी। उसकी इस हरकत पर दीवा के गाल लाल होने लगे थे। दीवा ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर जल्दी से आर्यांश के होठों पर हल्का सा किस करके साइड होने को हुई तभी आर्यांश ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे काफ़ी डीपली किस करने लगा। एक लंबे किस के बाद आर्यांश उसे अलग हुआ और बोला, चलो ठीक है, इसे याद करते हुए पूरा दिन निकाल ही लूँगा। दीवा को बाय बोलकर आर्यांश वहां से चला गया था। अचानक से उसका ये लवर बॉय वाला रूप देखकर दीवा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मूड भी काफी लाइट था। दीवा आगे गई तो उसके सारे कलीग्स एक साथ खड़े हुए थे। दीवा ने उन्हें देखकर हवा में अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हेलो एवरीबॉडी, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तुम सबको बहुत ज्यादा मिस किया। दीवा ने महसूस किया कि उसे देखने के बाद भी उन सबके चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त थे। अचानक डॉक्टर निश्चय ने खांसते हुए दीवा को दूसरी तरफ देखने का इशारा किया, जहां उनके डीन आलोक रंधावा खड़े हुए थे। अब उसे समझ आ गया था कि अचानक सब इतना प्रोफेशनल बिहेव क्यों कर रहे हैं। दीवा ने तुरंत ही अपना टोन चेंज किया और डीन से बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर गोयंका, अच्छा हुआ आप आ गईं, मीटिंग रूम में चलते हैं, डीन रंधावा ने थके हुए स्वर में कहा और तेज कदमों से चलते हुए मीटिंग रूम में जाने लगे। उनके साथ किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, ये पूरी तरह एक इमरजेंसी मीटिंग थी। कमरे के अंदर आते ही उन्होंने परेशान स्वर में कहा, जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर मल्होत्रा को कल रात को एक हार्ट स्ट्रोक आया था, उनकी सर्जरी करनी जरूरी है, लेकिन साथ ही वो अपनी पोजिशन को वापस नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए हमें एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी जो उनकी एब्सेंस में कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की पोजिशन ले सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, उनके कहते ही तुरंत एक दूसरी डॉक्टर बोली। उसका नाम डॉक्टर माया था, जो डॉक्टर मल्होत्रा के बाद इस पोजीशन की हकदार थी। वो उम्र में 32 साल के आसपास थी। दीवा और डॉक्टर माया के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था। हर किसी को यही लग रहा था कि डॉक्टर माया ही डायरेक्टर बनेगी। डॉक्टर रंधावा ने गहरी सांस ली और फिर दीवा की तरफ देखकर कहा, हालांकि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, पर हमें अपने काम को आगे बढ़ाना ही होगा। मैंने काफी सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है कि डायरेक्टर की पोजीशन डॉक्टर दीवा गोयंका को दी जाए। इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, दीवा ने तो बिल्कुल नहीं। वो हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगी। उसे वहां ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 4 महीने हुए थे। आते ही उसने काफी मेजर सर्जरी भी की थी। उसकी इस सक्सेस पर खुश होने की बजाय डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर माया हमेशा उससे चिढ़े हुए रहते थे। दीवा को लगा कि अगर वो डायरेक्टर बन गई तो उसके साथ ही डॉक्टर उससे और भी जलने लगेंगे। ऐसे में वो इतनी बड़ी पोजिशन नहीं ले सकती। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी पोजिशन संभाल पाऊंगी, आप एक बार फिर सोचिए, दीवा ने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा। हाँ जानता हूँ तुम नहीं आई हो, लेकिन तुमने काफी सारी सक्सेसफुल सर्जरी की है। आज तक तुम्हारे हाथ से कोई भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है। वैसे भी डॉक्टर मल्होत्रा अपना प्राइवेट अस्पताल खोलने का सोच रहे थे, ऐसे में मैं तुम्हें प्रमोट करने ही वाला था, डीन रंधावा ने जवाब दिया। मैं जानती हूँ मैंने अब तक सारी सर्जरी सक्सेसफुल की है, लेकिन मेरे अलावा यहाँ बहुत भी टैलेंटेड लोग हैं। आप डॉक्टर माया को भी देख लीजिए, आप उन्हें डायरेक्टर क्यों नहीं बना लेते, दीवा ने सुझाव देते हुए कहा। मैंने कहा ना डॉक्टर गोयंका, मैंने काफी सोच समझकर फैसला लिया है और आज से आप इस ड्यूटी को संभाल रही हैं। पेपर साइन करके केबिन चेंज कर लीजिएगा, रंधावा ने सख्त आवाज में कहा।
डॉक्टर माया की शक्ल देखने लायक थी। उसे यही लगा था कि रंधावा उसे ही डायरेक्टर की पोजीशन देगा। डॉक्टर रंधावा भी कुछ कम चालाक नहीं थे। वो जानते थे कि आर्यांश और दीवा के बीच जरूर कोई रिश्ता है। कल रात जब उन्होंने प्रपोज की न्यूज देखी तो वो समझ गए थे कि जरूर ये आर्यांश ने दीवा के लिए किया होगा। अगर दीवा की पोजीशन हाई होती तो आर्यांश उनके हॉस्पिटल में और भी इन्वेस्ट करता। दीवा का काम अब बढ़ गया था। हर कोई दीवा को उसकी नई पोजीशन के लिए बधाई दे रहा था और साथ ही ये भी कह रहा था कि वो उसकी पूरी मदद करेंगे। हालांकि दीवा ने पहले इस पोजीशन के लिए इनकार किया था, लेकिन अब बहुत खुश थी। ऊपर से सब उसके साथ भी थे। उसके बाद डॉक्टर दीवा ने डॉक्टर मल्होत्रा की सर्जरी की। हर बार की तरह उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। दोपहर के वक्त उसने आर्यांश को मैसेज करके अपनी नई पोजीशन के बारे में बताया। वो भी दीवा के लिए खुश था। दीवा लंच के लिए जाने वाली थी कि तभी सिस्टर नव्या उसके पास आई। कल रात का प्रपोजल किसी से छुपा हुआ नहीं था। नव्या ने दीवा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर परेशान लहजे में कहा, कल रात कपूर इंटरनेशनल की छत पर जो भी हुआ उसके बारे में सब जानते हैं। वो क्या तुम्हारे बारे में था? नव्या के साथ दीवा का रिश्ता अच्छा था, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ उसने मुझे प्रपोज किया था। तुमने उसे हाँ तो नहीं कह दिया है? जानती हो ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। हो सकता है ये उसका कोई खेल हो ताकि वो तुम्हें खुद से दूर ना कर सके, नव्या ने दीवा को समझाते हुए कहा। पहले तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में इमोशंस नजर आए। वो झूठ नहीं बोल रहा है, मैंने हाँ कह दिया है, दीवा ने जवाब दिया। क्या तुम उसके साथ खुश हो? नव्या ने कन्फर्म करने के लिए पूछा। दीवा ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आर्यांश की इतनी बेरुखी और बुरे बर्ताव के बाद भी वो उसके प्यार में कैसे पड़ गई थी। नव्या ने दीवा को गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। नव्या की सच्ची दोस्ती देखकर दीवा को अच्छा लगा। पहले भी उसने उसकी बातें काफी शांति से सुनी थी और आज जब दीवा आर्यांश के साथ आगे बढ़ने का सोच रही थी तब भी नव्या ने उसका साथ दिया। वहां से वो दोनों लंच करने के लिए नीचे आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश कपूर इंटरनेशनल में अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसकी हेड सेक्रेटरी उसके पास आई।
सर, मिस कियाना आपसे मिलना चाहती है, वो यहाँ ऑफिस आई है, उसने आर्यांश को आकर इन्फॉर्म किया। ठीक है, भेज दो, आर्यांश बोला। वो कियाना को आने से मना नहीं कर सकता था। आर्यांश की सेक्रेटरी उसके केबिन से बाहर चली गई थी। उसके ऑफिस में कोई भी कियाना को पसंद नहीं करता था। वो बहुत घमंडी थी और दूसरों को खुद से छोटा समझती थी। जब सेक्रेटरी ने कियाना को अंदर जाने को कहा तो वो पूरे एटीट्यूड से उठी और अपने बालों को हवा में झटकते हुए चल रही थी। उसकी हाई हील्स की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी और हर कोई उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। आर्यांश के केबिन में आते ही कियाना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी, कपूर इंटरनेशनल के पास से गुजरी तो सोचा तुमसे मिल लूं, कियाना ने बहाना लगाया। बाहर काफ़ी गर्मी है, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम बीमार हो जाओगी? आर्यांश ने जवाब दिया। उसने अपना काम छोड़ दिया था। कौन सा मुझे धूप में खड़े रहकर वेंडर से शॉपिंग करनी है, कियाना ने जवाब दिया और जानबूझकर आर्यांश के पास आ गई थी। उसकी ड्रेस आगे से काफी रिवीलिंग थी। चलो अच्छा किया, वैसे आज मुझसे मिलने कैसे आ गई, कुछ काम था क्या? आर्यांश ने सीधे सीधे पूछा। वो जानता था कि कियाना बिना वजह के उससे मिलने के लिए नहीं आएगी, खासकर तब जब कपूर इंटरनेशनल के ऊपर किसी के प्रपोज करने की खबर वायरल हो रही हो। कियाना ने अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट देखकर आर्यांश का हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए कहा, क्या किसी काम के चलते ही मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? मुझे तुम्हारी याद आ गई थी, इसलिए मिलने चली आई। हाँ बिल्कुल, जरूर आ सकती हो, आर्यांश ने जवाब दिया। उसने आर्यांश का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसके गले लग गई थी। आर्यांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब दीवा के अलावा कोई और उसके करीब आता था। वो किसी रोबोट की तरह एक्ट कर रहा था। कियाना आर्यांश से अलग हुई और बोली, अच्छा मैंने सुना है कल कपूर इंटरनेशनल के टेरेस पर एक बहुत ही ग्रैंड प्रपोजल हुआ था, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? कियाना ने आखिर इस बारे में पूछ ही लिया था। आर्यांश को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो जानता था कि कियाना इसी वजह से वहां पर आई होगी। हाँ जानता हूँ, आर्यांश ने इतना ही कहा। हाँ मैंने भी उसके बारे में देखा, वो काफी शानदार था, लोग बोलते हैं कि ये तुमने किया है, क्या तुमने किसी को प्रपोज किया है आर्यांश? कियाना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कियाना सच अच्छे से जानती थी कि ये प्रपोजल आर्यांश की तरफ से ही था, क्योंकि वो काफी ग्रैंड था और उसने जरूर दीवा को ही प्रपोज किया था। नहीं, ये मैंने किया ही नहीं किया था, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैंने किया होगा? आर्यांश ने तुरंत इनकार कर दिया था। आर्यांश जानता था कि अगर उसने गलती से भी इस बारे में कियाना को बताया तो कियाना दीवा को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसकी फितरत ऐसी ही थी। वहीं आर्यांश को अपनी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते देखकर कियाना गुस्से से मुट्ठियां बन गई थी। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आखिर कब तक आर्यांश दीवा को इससे प्रोटेक्ट करके रख पाएगा? चलिए आगे पता चल जाएगा। फिलहाल आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।